अथ पञ्चम परिच्छेदः अथ केयम् अभिनवाद्यञ्जना नाम वृतिरित्युच्यते श्लोक नंबर 1 वृतीनाम विश्रान्तेर अविधातात्पर्यलक्षणाख्यानाम् अङ्गीकार्या तुर्या वृतिबोधे रसादिनाम् व्याख्या संस्कृत में अविधायाः संकेतता अर्थ मात्रबोधन वीरताया नवस्तलंकार रसादि व्यंग बोधने क्षमत्वम् न च संकेतितो रसादि नहि विभावाद्य अभिधानमेव तद अभिधानम् तस्य तदैक रूप्यान अंगीकारात् यत्र च शब्देनाभिधानम् तत्र प्रत्युत दोषायेति वक्ष्यामः के क्वचित् शृङ्गारसो वयम् इत्यादौ स्वशब्देन अभिधाने अपि न तत्प्रतीतिः तस्य स्वप्रकाशानन्दरूपत्वात् अभिहितान्वय आदिवीर अङ्गीकृता तात्पर्याख्या प्रीतिरपि संसर्गमात्र परिच्छिणा न व्यङ्गबोधिनी यत्र केचिद् आहुसो अयमिशोरिव दीर्घदीर्घतरो अविधा व्यापारः इति यच्च धनिकेनोक्तम् तात्पर्याव्यतिरेकाश्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः यत् यावत् कार्यप्रसारित्वा तात्पर्य न तूलाधृतम् इति तयोरुपरि शब्दबुधिर्कर्मणाम् विरम्य व्यापारभावः इति वादिभिरेव पातनीयो दण्डः एवम् च किम् इति लक्षणाप्युपास्य दीर्घ अदीर्घ राभिधाव्यापारेणपि तदर्थबोधसिद्धे किम् इति च ब्राह्मणा पुत्रस्य जातः कन्या ते गर्भिणी इत्यादवापि हर्षशोकादिनामपि न वाच्यत्वम् यत् पुनरुक्तम् पौरुषेयम् अपौरुषेयम् च वाक्यम् सर्वमेव कार्यपरम् अतत्परत्वे अनुपादे अत्वात् वादुनमत वाक्यवत ततश्च काव्यशब्दानाम् निर अतिशयसुखास्वाद व्यतिरेकेण प्रतिपाद्य प्रतिपादकयोः प्रवृत्त्यौ पैक प्रयोजनानुपलब्धे नीर अतिशयसुखास्वाद एव कार्यत्वेन अवधार्यते यत् परः शब्दः स शब्दार्थः इन्यायात इति तत्र प्रष्टव्यम् किमिदम् तत्परत्वम् नाम तदर्थत्वम् वा तात्पर्यवृत्त्या तद्बोधकत्व वा आद्येन विषाद व्यङ्गत्वे अपि तदर्थतान् पायात द्वितीये तु केयम् तात्पर्यव्याख्यावृतिः अभिहितान्वय वादेभिरङ्गीकृता तन्वया वा आस्ते दत्तमेवोत्तरम् द्वितीये तु नाम माद्वय विवादः तन्मते अपि तुरीयवृतिः सिद्धेः नन्वस्तु युगपदेव तात्पर्यसत्या विभावादिसंसर्गस्य प्रसादेश्च प्रकाशनम् इति चेतन तयोः हेतु फलभाव अङ्गीकारात् यदाह मुनि विभावा अनुभावव्यभिचारे संयोगात्र संनिष्पतिः इति सहभावे च कुतः सभ्येतर विषाणयोर इव कार्यकारणभावः पर्वापर्य विपर्यात गङ्गायाम् घोषः इत्यादौ तटाद्यर्थ मात्रबोध विरताया लक्षणायाश्च कुतः शीतत्वपावनत्वादि व्यङ्गबोधयता तेन तुरीया वृतिरूपास्यैवेति निर्विवाद नेतत किञ्च
देवो दयादुदितम् दिवि दवदवनद्योत्तविद्योत्तमानु भानुर्भ्राजिष्णु लीलालय विलय कलोत्केलिभालान्तरालः भ्राम्य अद्भूत प्रभुता अठः शीतम्मी शस्त्रासिता अशेषभीति भ्रूतेशो भक्तभूतिर्भव भवदवच्छूद्रावणः शूलपाणिः। हिंदी। पहले कहा जा चुका है कि व्यंग अर्थ काव्य व्यवहार का कारण होता है और व्यंग वही है जो व्यंजना शक्ति से बोधित हो, परंतु व्यंजना शक्ति सर्वसम्मत नहीं है, उस पर अनेक आचार्यों का विवाद है। अतः अलंकार शास्त्र के सिद्धांतानुसार व्यंजना शक्ति को सिद्ध करने और उसके ऊपर किए हुए आक्षेपों को दूर करने के लिए उत्थानिका देते हैं। अथ के यम इति, यह व्यंजना नामक नई वृत्ति क्यों मान रखी है, इसका क्या प्रयोजन है? उत्तर, वृत्ति नाम अपना नियम अर्थ बोधन करके अविधा तात्पर्य और लक्षण इन तीनों वृत्तियों के विरत होने हो जाने के कारण रसादिकों के बोधन के लिए चौथी वृत्ति व्यंजना मानना आवश्यक है। बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, अर्थात शब्द बुद्धि और कर्म इन तीनों का कोई व्यापार विरत होकर फिर नहीं उठ सकता, इसलिए देवदत्तो ग्रामम गच्छति इत्यादि स्थल में अविधा वृत्ति से पहले पहल सब पदों के अर्थ अलग अलग उपस्थित होते हैं और फिर उसके विरत होने पर तात्पर्य नामक वृत्ति के द्वारा उनका कर्तृत्व कर्मत्व आदि रूप से अन्वय होकर एक वाक्यार्थ बनता है। यदि अविधा के अनंतर तात्पर्य वृत्ति अनुत्पन्न हो तो लक्षण का आश्रयण किया जाता है, जैसे गंगायाम घोष, यहाँ गंगा पद से प्रवाह और घोष पद से अहिरों की झोपड़ियों का बोध अविधा के द्वारा हो जाने का तात्पर्य अनुत्पन्न होता है, क्योंकि प्रवाह के ऊपर कुटीरों ब्रैकेट झोपड़ियों ब्रैकेट बंद का होना असंभव है। अतः गंगा पद का अर्थ प्रवाह का वाक्यार्थ में अधिकरण रूपण से संबंध अनुपन्न है, इसलिए गंगा पद समीप्य संबंध से अपने संबंधित तट को लक्षण के द्वारा उपस्थित करता है। तदनंतर गंगा तटे घोष, ऐसा अर्थ उपस्थित होता है। इस प्रकार अविधा शक्ति सबसे पहले अपना काम करती है और तात्पर्य बाधित होने पर दूसरे नंबर का लक्षण आती है। इस प्रकार तीसरे और यदि तात्पर्य अनुत्पन्न हो तो दूसरी ही नंबर पर तात्पर्य वृत्ति वाक्यार्थ का ज्ञान कराती है, परंतु रस भाववादी की प्रतीति वाक्यार्थ ज्ञान के भी पीछे होती है। उस समय अविधा लक्षण और तात्पर्य ये तीनों वृत्तियाँ अपना अपना काम करके विरत हो चुकी है और विरत हुए व्यापार शब्द का फिर उठना असंभव है। अतः कोई चौथी वृत्ति यदि न मानी जाए तो रसादि का बोध किसके द्वारा होगा, इसलिए तुरीय चतुर्थ वृत्ति मानना परम आवश्यक है, उसी को व्यंजना कहते हैं। अविधाया इति, अविधा केवल संकेत अर्थ का बोधन करके विरत हो जाती है, अतः उसका वस्तु अलंकार और रसादि रूप व्यंग के बोधन में सामर्थ्य नहीं हो सकता। नच इति, इसके अतिरिक्त सरस काव्य के विभाव आदि का ही वर्णन होता है, उन विभाव आदिकों के वाचक पदों का रस में संकेत ग्रह है ही नहीं। जिस प्रकार घट पद का संकेत घड़े में गृहित होता है, उस पद से वह अर्थ बिना विलंब उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार राम सीता पद जो विभाव आदि के वाचक हैं, उनका संकेत किसी रस आदि में तो गृहित है ही नहीं, जो उनमें अविधा के द्वारा श्रृंगार आदि रस का बोध हो जाए नहीं इति, और न विभाव आदि का अविधान वर्णन ही रसादि का अविधान कहा जा सकता है, क्योंकि रसादिक और विभाव आदि को एक ही माना जाता है। रसादि और उनके विभाव आदि परस्पर भिन्न होते हैं। यत्र च इति, यद्यपि रस और श्रृंगार आदि पद रसों के संकेतित होते हैं, परंतु जहाँ जहाँ रस की प्रतीति होती है वहाँ वहाँ तो रसादि पद ही मिलते हैं, न श्रृंगार आदि ही। किंतु इसके विपरीत जहाँ कहीं रस अथवा श्रृंगार आदि पदों से अभिमत रस का अभिधान किया जाता है, उसे आगे चलकर दोषों में गिनाएंगे। क्वचित इति, कहीं कहीं तो श्रृंगार रसो अयम यह कह देने पर भी श्रृंगार रस की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि रस तो स्वयं प्रकाश है और आनंद स्वरूप है, परंतु अविधा वृत्ति से उत्पन्न ज्ञान न तो स्वयं प्रकाश है और न आनंद स्वरूप ही। अतः उक्त कारणों से अविधा शक्ति के द्वारा रस की प्रतीति होना असंभव है। जैसे वादी संवादी और अनुवादी रस स्वरों का यथावत आरोह अवरोह करने पर भैरव आदि राग व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार विभाव आदि अनुभाव और संचारी के यथावत निरूपण करने पर रस अभिव्यक्त होते हैं। जिस प्रकार बार बार भैरव भैरव कहने पर भी उचित क्रम से स्वर सन्निवेश न किया जाए तो उक्त राग नहीं बन सकता, उसी प्रकार विभावादिकों का समुचित सन्निवेश हुए बिना चाहे कोई विषों वार रस रस या श्रृंगार श्रृंगार ही क्यों न चिल्लाया करे, रस की व्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे समुचित स्वर सन्निवेश होने पर भी किसी राग का नाम न लेने पर भी उसकी साक्षात मूर्ति सी सामने खड़ी हो जाती है, वैसे ही रस का नाम न लेने पर भी विभावादिकों का समुचित सन्निवेश होने पर अर्थ रस का सुस्पष्ट आस्वाद होने लगता है। अतः राग के समान रस भी व्यंग ही है, अभिधेय नहीं। अभिधे इति अभितान्वयवादियों ब्रैकेट कुमारिल भट्ट प्रभृति मीमांसकों ब्रैकेट बंद की मानी हुई तात्पर्य वृत्ति भी केवल संसर्ग कर्तृत्व कर्मत्व आदि का बोधन करके परीक्षण हो जाती है, अतः उसमें भी व्यंग अर्थ के बोध होने की कोई आशा नहीं है। यच्च इति यह जो कोई कहते हैं कि अविधा शक्ति का व्यापार बड़ के व्यापार की तरह बड़े से बड़ा हो सकता है, अर्थात जिस प्रकार किसी बलवान पुरुष का छोड़ा हुआ बाण अपने एक ही व्यापार से शत्रु के कवच को तोड़कर छाती को पार करके बाणों प्राणों का हरण करता है, इसी प्रकार व्युत्पन्न मति पुरुषों से कहे हुए शब्दों एक ही अविधा व्यापार से संकेतित अर्थ को उपस्थित करके व्यंग अर्थ का ही भी बोधन कर देते हैं। इसके अतिरिक्त धनिक ने जो कहा था कि तात्पर्य इति व्यंगकत्व तात्पर्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः ध्वनि या व्यंजनावृत्ति तात्पर्य वृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है। तात्पर्य का प्रसार तो जहाँ तक चाहे वहाँ तक हो सकता है, यावत काय प्रसार होता है, जितना कार्य हो उतना ही तात्पर्य का प्रसार होता है, परंतु तात्पर्य तराजू पर तोली हुई कोई वस्तु नहीं है जिसके झट से घट जाने का संदेह हो। अतः तात्पर्य वृत्ति से ही वाक्यार्थ का ज्ञान और व्यंगार्थ का भान दोनों हो सकते हैं, व्यंजना वृत्ति के पृथक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मतों का खंडन करते हैं तयोर इति, इन दोनों के ऊपर जो शब्द बुद्धि इत्यादि न्याय के मानने वाले को छोटा फटकार देते हैं, तब विरत होने पर फिर शब्द के उस व्यापार से काम ही नहीं हो सकता, तो दीर्घतर व्यापार कहके एक ही से अनेक बार काम लेना संभव नहीं, और न वाक्यार्थ बोध के पीछे तात्पर्य वृत्ति से ही कुछ काम चल सकता है। बाण का दृष्टांत यह उक्त न्याय से ही अनादृत हो सकता है, तुलाधितम का उपहास भी अकिंचित कर है। यदि कोई कहे कि हम न्याय को ही नहीं मानते हैं, तो उसका समाधान करते हैं एवं च इति, यदि अविधा के इस दीर्घ दीर्घतर व्यापार से ही व्यंग्यार्थ का बोध मानते हो तो तुम्हें लक्षण शक्ति के मानने पर भी क्या आवश्यकता है, उसका मानना भी छोड़ दो। या अविधा के लंबे लंबे प्रकट दीर्घ दीर्घतर प्रकटबंध व्यापार से ही लक्षार्थ के बोधन का भी काम चल ला लेना, तुम्हारी एक शक्ति ही रबड़ की तरह फैल कर दीर्घ दीर्घतर व्यापार कर लेगी। इसके अतिरिक्त यदि शब्द सुनने के अनंतर जो अर्थ प्रतीत होते हैं उन्हें अविधा से ही बोधित मानते हो तो ब्राह्मण पुत्र से जाता है, इससे सुनने के पीछे प्रतीत हुआ हर्ष और कन्या ते गर्भिणी, इस वाक्य के सुनने के पीछे प्रतीत हुआ शोक भी वाच्य क्यों न हो जाएगा। इसलिए अविधा के दीर्घ दीर्घतर व्यापार से ही व्यंग्यार्थ का बोध हो सकता है, यह मीमांसकों का मत ठीक नहीं है। जो अन्विता विधानवादी मीमांसक लोग यत्परः शब्दः शब्दार्थः इस न्याय के बल से व्यंग का अविधा के द्वारा प्रतीत होना मानते हैं, उनका निराकरण करते हैं। यत् पुनरिति यह जो कहा है कि पौरुषेय हो या अपौरुषेय सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं, यदि कार्यपरक न हो तो प्रमत प्रलाप की तरह अनुपादेय हो जाए। वाक्यों की उपादेयता तभी प्रतीत होती है जब वे किसी कार्य के बोधन में तत्पर हो। जिन वाक्य को कुछ विधेय नहीं होता, जो किसी कार्य का विशेष रूप से बोधन नहीं करते, वे पागलों की बड़बड़ाहट की तरह अग्राह्य होते हैं। अतः वर्तमान कालिक पुरुषों के अथवा मनु आदि महर्षियों के पौरुषेय वाक्य एवं वेद आदि के अपौरुषेय वाक्य सभी कार्य परक माने जाते हैं। ये सभी किसी विशेषता के बोधक समझे जाते हैं। ततश्च इति, इसलिए काव्य शब्दों को भी कार्य परक मानना ही पड़ेगा। और काव्यों के प्रतिपाद्यों ब्रैकेट श्रोताओं ब्रैकेट बंद और प्रतिपादकों ब्रैकेट वक्ताओं ब्रैकेट बंद की प्रवृत्ति का औपायिक फल निरतिशय सुखास्वाद ब्रैकेट अपूर्व आनंद अनुभव ब्रैकेट बंद के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए काव्य वाक्यों का कार्य अथवा विधेय ही निरतिशय सुखास्वाद माना जाना चाहिए, क्योंकि यत्परः शब्दः स यह शब्दार्थः यह नियम है। शब्द जिसका बोधक हो, जिस तात्पर्य का बोध कराने के लिए प्रत्युत हो, वही उस शब्द का अर्थ होता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्ति किसी फल की इच्छा से ही होती है। काव्य के सुनने सुनाने में जिन लोगों की प्रवृत्ति है, उसका यदि फल देखा जाए तो अपूर्व आनंद अनुभव के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन वाक्यों का निरतिशय आनंद के बोधन में तात्पर्य है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं शब्दों से यह उत्पन्न हुआ है और जो जिस शब्द का तात्पर्य हो वह उसी का अर्थ माना जाता है। यह नियम यत्परः शब्द कहा जा चुका है। अतः काव्यों का कार्य अथवा विधेय निरतिशय आनंद ही है। इस मत का विकल्पों के द्वारा खंडन करते हैं। तत्र प्रवष्टव्यम, यह जो कहते हैं कि जिसमें शब्द का तात्पर्य हो वही शब्दार्थ है, यह प्रष्टव्य यह है कि तत्परत्व क्या वस्तु है, अर्थात इस उक्त नियम में तात्पर्य शब्द में तुम्हारा क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य का मतलब तदर्थत्व है अथवा तात्पर्य नामक वृत्ति से बोधित होना। यदि पहला पक्ष मानो तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि व्यंग होने पर भी तदर्थत्व का अपाय नहीं होता। तदर्थत्व का मतलब है उस पद का अर्थ होना। इससे यह तो निकलता ही नहीं कि कौन सी वृत्ति से यह अर्थ होना चाहिए। चाहे किसी भी वृत्ति से निकला हुआ अर्थ उस शब्द का तदर्थ कहला सकता है। इसलिए व्यंजना शक्ति के द्वारा प्रतीत हुआ निरतिशय आनंद भी यदि तदर्थ कहलाए तो कोई क्षति नहीं, क्योंकि इससे अलंकारिकों की मानी हुई व्यंजना वृत्ति का खंडन नहीं हो सकता। अतः इस पक्ष में हमें विवाद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। द्वितीय तु, यदि दूसरा पक्ष मानो तो यह बतलाओ कि यह तात्पर्य नामक वृत्ति कौन सी है। अभिहितान्वयवादी मीमांसकों की मानी हुई संसर्ग मर्यादा नामक संबंध बोधक वृत्ति है या कोई दूसरी, इनमें से यदि पहला पक्ष मानो तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि तात्पर्य वृत्ति से पदार्थों का संबंध मात्र बोधन होता है, उसके बाद वह परिक्षीण हो जाती है, अतः उससे फिर व्यंग अर्थ का बोध कराना संभव नहीं। यदि उससे अतिरिक्त वृत्ति मानकर उनका नाम तात्पर्य वृत्ति रखते हो तब तो नाम मात्र में विवाद रहा। पूर्व सम्मत अभिधा लक्षण और तात्पर्य के अतिरिक्त चौथी वृत्ति तो तुम्हारे मत में भी सिद्ध ही हो गई है। भेद केवल इतना रहा है कि हम चौथी वृत्ति को व्यंजना कहते हैं और तुम तीसरी तथा चौथी दोनों को तात्पर्य वृत्ति कहते हो। वस्तु तो अलग सिद्ध हो ही गई। नन वस्तु, अच्छा अभिहितान्वय वादियों की सम्मत तात्पर्य शक्ति से ही पदार्थों का परस्पर संबंध, विभाव आदि का संसर्ग और रसादि का ज्ञान यदि एक साथ ही प्रकाशित हो जाए तो क्या हानि है। इस प्रकार चौथी वृत्ति भी नहीं माननी पड़ेगी और काम भी चल जाएगा। केवल तात्पर्य वृत्ति से ही दोनों प्रकाशन मान लेंगे, इसका खंडन करते हैं। इति च एत, यह नहीं हो सकता, क्योंकि विभाव आदि के संसर्ग को रस का कारण माना गया है और रस ज्ञान को विभाव आदि ज्ञान का कार्य माना गया है। कार्य और कारण कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। कारण पहले हुआ करता है और कार्य उसके पीछे, अतः एक वृत्ति से इन दोनों का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। इन दोनों का कार्य कारण भाव भरत मुनि ने कहा है। विभाव इति, विभाव अनुभाव और संचारियों के जो संयोग से अर्थात इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात रस रूप कार्य की सिद्धि होती है। पहले सिद्ध किया गया है कि रस कार्य नहीं होता, अतः यह पौर्वापर्य के कारण होने उन शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग जनन अथवा आवरण भंग के कारण को उपचार से रस का कारण कह दिया है। सहभावे च यदि विभाव आदि के ज्ञान और रस ज्ञान का सहभाव ब्रैकेट कहीं काल में उत्पन्न होना ब्रैकेट बंद माना जाए तो कार्य कारण भाव नहीं बन सकता। एक साथ निकले हुए किसी पशु के बाएं और दाहिने सिंह एक दूसरे के साथ और कारण नहीं हो सकते और पौर्वापर्य हो ही वही कार्य कारण भाव होता है उसके विपर्य में नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि तात्पर्य वृत्ति से व्यंग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता। अब लक्षणा के द्वारा व्यंग्यार्थ बोध को असंभावनीयता दिखाते हैं। गंगायाम इति गंगायाम घोष इत्यादि स्थलों में लक्षणा शक्ति केवल तटादि रूप अर्थ का बोधन करके व्यत हो जाती है, फिर उससे शीतत्व पावनत्व आदि व्यंगत्व का बोध नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व ग्रंथ से यह सिद्ध होता है कि अविधा तात्पर्य और लक्षणा इन तीनों वृत्तियों से व्यंग्यार्थ का बोधन नहीं हो सकता, अतः चौथी वृत्ति ही माननी पड़ेगी, अवश्य ही माननी पड़ेगी। इसी का नाम व्यंजना है। संस्कृत श्लोक नंबर 2। बोध स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीत कालानाम आश्रय विषयादिनाम भेदा भिन्नो अविधेयतो व्यंग्यः। व्याख्या संस्कृत में वाच्यार्थ व्यंग्यार्थयो हि पद तदर्थ मात्र ज्ञान निपुणैः वैयाकरणैरपि सहृदयैरेव च संवेद्यतया बोद्धब्रिभेदः भम्म धम्मीय इत्यादौ कचिद्वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपतया कवचित् निःशेषच्युत चंदरम इत्यादौ निषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेदः गतो अस्वगतोस्तमर्कः इत्यादौ च वाच्योऽर्थ एक एव प्रतीयते व्यंग्यस्तु तदबोधयज्ञा आदि भेदात् क्वचित् कान्तम् अभीशर इति गावो निरुध्यताम् इति नायकस्यायमागमनावसरः इति संतापो अधुना नास्ति इत्यादि रूपेणानेक इति संख्या भेदः वाच्यार्थ शब्दोच्चारण मात्रेण वेद्यः एष तु तथा विधय प्रतिभानैर् मल्यादिनेति निमित्त भेदः प्रतीति मात्र करण चमत्कार कारणश्च कार्यभेदः केवल रूपतया चमत्कारितया प्रतीति भेदः पूर्वपश्चाद् भावेन च कालभेदः शब्दाश्रयत्वेद शब्दत एकदेश अर्थवर्ण संघटनाश्रयत्वेन च चाश्रयभेदः कस्वण होइरोषो दत्थुण पियाय शबणम अहरम सभमर पणमघाईणी वरिया वामे सहसु पणिहम इति प्राकृत गाथायाम इति सखित कांत विषयत्वेन विषय भेद तस्मान अभिधि अभिधेय एवं व्यंगः किंच। हिंदी। अब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ का अत्यंत भेद दिखा के उसके द्वारा उन अर्थों की बोधक वृत्तियों की भिन्नता सिद्ध करके अभिधा वृत्ति से व्यंजना का भेद प्रतिपादन करते हैं। बोधिद्रैति बोधा स्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति काल आश्रय और विषय आदि की भिन्नता के कारण व्यंग अभिधेय वाच्यार्थ से भिन्न है। क्रम से इनका भेद दिखाते हैं। वाच्यार्थ इति शब्दों का वाच्य अर्थ और उन वैयाकरणों को भी ज्ञात हो जाता है जो केवल पद और पदार्थ का ही साधारण ज्ञान रखते हैं, परंतु व्यंग अर्थ केवल सहृदयों की ही भाषित होती है। परंतु व्यंग अर्थ केवल सहृदयों को ही भाषित होता है। वाच्यार्थ के बोधा ब्रैकेट ज्ञाता ब्रैकेट बंद प्रखर वैयाकरण भी हो सकते हैं, परंतु व्यंग अर्थ उन्हें छू तक नहीं सक जाता। अतः बोधा के भेद से इन दोनों अर्थों का भेद सिद्ध होता है। यदि व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न न होता तो उसे वैयाकरण भी समझ ही लेते हैं। भ्रम धार्मिक कम इत्यादि स्थल में वाच्यार्थ विधि स्वरूप है, परंतु व्यंग्यार्थ निषेध रूप है। एवं निःसच्युत इत्यादि में वाच्यार्थ निषेध रूप है, परंतु व्यंग्यार्थ विधि रूप का है। अतः वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के स्वरूप में भी भेद होता है। गतो अस्तम अर्क इत्यादि में वाच्य अर्थ सबको एक ही प्रतीति होता है, परंतु व्यंग अर्थ भिन्न भिन्न श्रोताओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं। अतः वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में संख्या भेद भी है। तथापि यदि दूती ने आकर नायिका से कहा कि गतो अस्तम अर्क, तो वाच्य अर्थ तो यही होगा कि सूर्य अस्त हो गया है, परंतु व्यंग्यार्थ यह होगा कि नायक के समीप अभिसरण करो। यही वाक्य यदि किसी गोपाल ने अपने साथी से कहा तो वाच्य वही रहेगा, परंतु व्यंग यह होगा कि गवे इकट्ठी करो, अब चलने का समय हो गया है। यदि किसी कामकाजी आदमी की स्त्री ने यह कहा तो यह व्यंग रहेगा कि अब स्वामी के आने का समय है। यदि दिन की धूप से संतप्त किसी आदमी ने कहा तो यह प्रतीति होती है कि अब संताप नहीं है। यदि पढ़ते हुए ब्रह्मचारी से किसी ने कहा तो यह व्यक्त होगा कि अब पढ़ना बंद करो, संध्या हवन का समय है। यदि किसी डाकू ने अपने साथी से कहा तो यह सूचित होता है कि शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ। इन सब स्थानों पर वाच्य तो एक ही है, परंतु व्यंग अनेक है। अतः संख्या भेद से वाच्य की अपेक्षा व्यंग भिन्न होता है। वाच्यार्थ इति वाच्य अर्थ केवल शब्द के उच्चारण से ही प्रतीत हो सकता है, परंतु व्यंग्यार्थ समझने के लिए विशुद्ध ब्रैकेट निर्मल ब्रैकेट बंद प्रतिभा की आवश्यकता है। अतः निमित्त भेद के कारण ही वाच्य से व्यंग भिन्न है। प्रतीति इति वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है, परंतु व्यंग अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। अतः इन दोनों के कार्य में भी भेद है। पूर्व इति वाच्य अर्थ पहले प्रतीत होता है, व्यंग उसके पीछे। अतः इन दोनों में काल का भी भेद है। शब्द इति वाच्य केवल शब्दों में आश्रित रहता है, और व्यंग शब्द में शब्द के किसी एक देश में अर्थ में किसी वर्ण में अथवा रचना में भी रह सकता है। अतः इन दोनों में आश्रय भी भिन्न है। कस्व एति कस्यवान भवती रोषो दृष्टा प्रियासा सवर्णम धर्म स ब्रह्म पद्मा ग्राइणी वारित वामे सह स्वेदानीम। अर्थ प्रिया का वर्ण युक्त ओष्ठ देखकर भला किसके मन में क्षोभ न होगा। सभी को संदेह हो सकता है, मैंने बहुत तेरा मान किया पर तूने एक न मानी, और भ्रमर युक्त कमल को सूंघ ही लिया। हे भ्रमर युक्त पद्म को सूंघने वाली निवारित वामा, अब तू सहन कर, जो कुछ तेरे सिर पर पड़े उसे भोग। जब तू किसी का कहा मानती है ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है। यह वाच्य अर्थ का विषय तो वही नायिका है जिससे यह सखी उक्त वाक्य कह रही है, और व्यंग अर्थ का विषय उसका पति है जिसे उसके ओष्ठ से वर्ण देखकर संदेह हुआ। सखी इस प्रकार बोल रही है मानो उसने नायक को देखा ही नहीं, ओष्ठ में जो वर्ण है वह भ्रमर के काटने से हुआ है, पर पुरुष के संग से उत्पन्न नहीं हुआ। यह अर्थ यह व्यंग है, परंतु इसका विषय नायक ही है, क्योंकि उसी को यह बात बताने की आवश्यकता है। नायिका तो खूब जानती है कि वर्ण कैसे हुआ है, अतः नायिका में केवल वाच्यार्थ ही उत्पन्न उपयुक्त है और नायक में केवल व्यंग्यार्थ। इसलिए वाच्य और व्यंग में विषय भेद भी होता है। इन सब उक्त भेदों के कारण वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की भिन्नता स्पष्ट है। अविधेय ही व्यंग नहीं हो सकता। व्यंजनावृत्ति माने बिना रसादि का बोध नहीं हो सकता, यह कहते हैं संस्कृत प्रागसत्वाद्रसादेनु बोधिके लक्षणाभिधे किंच मुख्यार्थबाध्यस्य विरहादपि लक्षण। व्याख्या संस्कृत में न बोधिका इति शेषः न हि कोऽपि रसनात्मक काव्य परा भिन्नो रसादि पद प्रतिपाद्य पदार्थ प्रमाण सिद्धो अस्ति यमीमे लक्षणाभिधे बोधयेताम् किंच यत्र गंगायाम घोषः इत्यादौ उपात शब्दार्थानां बभूवसन् वान्वयो अनुपपत्या वाद्यते तन्नैव हि लक्षणायाः प्रवेश यदुक्तं न्याय कुसुमाञ्जलाव उद्दय नाचार्ये श्रोतान्वयादन कांक्षं नवाच्यं ह्यन्न दिक्षति पदार्थान्वय वैधुर्यात अदाक्षिप्तेन संगतिः न पुनः शून्यम वासगृहम इत्यादौ मुख्यार्थवादः। यदि च गंगायाम घोषः इत्यादौ प्रयोजनम लक्ष्यम स्यात् तीरस्य मुख्यार्थत्वं बाधितत्वं च स्यात् तस्यापि च लक्ष्यतया प्रयोजनान्तरं तस्यापि प्रयोजनान्तरं इत्यन्वस्थापत्पातः न चापि प्रयोजनं विशिष्ट एव तीरे लक्षण सय प्रयोजनयोर युगपत् प्रतित्यन भ्यू पगमात नीलादिसंवेदनान्तरमेव हीज्ञाततया अनुव्यव सायस्य वासंभवः। हिंदी प्राग सत्वात इति शब्द व्यापार से पहले रसादिकों को सत्ता ही नहीं होती, अतः लक्षणा और अभिधा रस का बोधक नहीं हो सकता। अभिधा और लक्षणा से वह वस्तु बोधित हो सकती है जो पहले से विद्यमान हो। गंगा और उसका तट पहले से ही सिद्ध है, अतः गंगायाम घोषा यह गंगा पद अभिधा से प्रवाह हो को और लक्षणा से तट को बोधित करता है। असिद्ध वस्तु से लक्षणा और अभिधा की गति नहीं होती। रमन ब्रैकेट आस्वादन ब्रैकेट बंद व्यापार में से भिन्न रस पद का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाण सिद्ध नहीं है जिसे लक्षणा और अभिधा शक्ति बोधित कर सके। वस्तु तस्तु यह नियम नहीं है कि अविधा से सिद्ध वस्तु का ही बोध होता है। घटम करोति ओदनम पचति इत्यादि उदाहरणों में घट और ओदन पहले से विद्यमान नहीं रहते, प्रत्युत किया निष्पत्ति के अनंतर संपन्न होते हैं। कर्ता के व्यापार का विषय घट का ओदन नहीं होता, अपितु उनके साधन मृतिका और तंडुल आदि होते हैं। अतएव श्री वाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि साधन गोचरो ही कर्त व्यापारो न फल गोचर। यदि रस को व्यापार विशेष प्रकट रसन प्रकट बंद रस स्वरूप माने तो भी वह अविधा और लक्षण से अभी अप्रतिपाद्य सिद्ध नहीं होता। जब समस्त व्यापारों का इन शक्तियों के द्वारा बोधन होता है तो रसन व्यापार का बोध इनसे क्यों नहीं हो सकता। काव्य प्रकाश ने लिखा है वाचक्वा नाम अर्थापेक्षा व्यंजना काम तू न तदपेक्षत्वम्। इसकी टीका करते हुए प्रदीपकार ने लिखा है वाचकस्य संकेत इत्यर्थपेक्षा संकेत इत एव ह्यार्थे अभिधा प्रवर्तते नत्वेवम् व्यंजकः। यह ठीक है, अभिधा और लक्षण दोनों ही संकेतित अर्थ की अपेक्षा करती है, किंतु उसका पहले से सिद्ध ब्रैकेट विद्यमान ब्रैकेट बंद रहना आवश्यक नहीं। अभिधा के द्वारा रस आदि का बोध इसी कारण नहीं होता कि रस के व्यंजक पदों का संकेत उस रस में होता नहीं। शून्य वास गृहम इत्यादि शब्द श्रृंगार रस से संकेतित नहीं है, यह प्राग सत्व प्रयोजक नहीं है। गंगायाम घोषम रचयति इत्यादि उदाहरणों में लक्षण भी प्राग सत्व असिद्ध वस्तु में प्रवृत्त होती है। किंच मुख्यार्थ इति इसके अतिरिक्त रस के प्रतिष्ठित स्थल में मुख्य अर्थ का बोध भी नियत है नहीं, इस कारण भी लक्षणा के द्वारा रस की प्रतीति नहीं हो सकती। हेत्वांतर कहते हैं किंच यत्र इति गंगायाम घोषः इत्यादि स्थल में जहाँ उन पद के अर्थों का संबंध आपस में अनुत्पन्न हो, अनुत्पत्ति के कारण जहाँ वाच्य अर्थ का संबंध ही न बन सकता है, वही लक्षणा होती है। गंगा पद का अर्थ प्रवाह, घोष पद का अर्थ कुटीर का अधिकरण नहीं हो सकता। अतः इन दोनों का अन्वय अनुत्पन्न होने के कारण लक्षणा होती है। ऐसा ही न्याय कुसुमांजलि में श्री उदयनाचार्य ने कहा है, श्रुतान्वय इति, साक्षात श्रुत पदों के अन्वय से निराकांक्ष होने पर वाक्य फिर और कुछ नहीं चाहता। अर्थात यदि वाक्य में पड़े हुए पदों के अर्थ परस्पर संबंध करके वाक्यार्थ बोधन में समर्थ हो तो फिर उस वाक्य में किसी अन्य अर्थ का वाकांक्षा नहीं रहती, और यदि पदार्थों का अन्वय विदुर अनुत्पन्न हो तो आक्षिप्त अर्थात शब्दार्थ सक्यार्थ से संबंध अर्थ को साथ मिलाकर संगति अर्थात अन्वय किया जाता है। इससे यह निकलता है कि अनुत्पत्ति होने पर ही लक्षणा की गति होती है, परंतु शून्यम वास गृहम इत्यादि पूर्वोक्त रस के उदाहरण में तो मुख्यार्थ का बोध है नहीं, फिर वह लक्षणा कैसे होगी। यदि चेति, यदि गंगायाम घोषः इत्यादि स्थल में शीतत्व पावनत्व आदि प्रयोजन को भी लक्ष्य मानोगे तो तीर को गंगा पद का मुख्यार्थ मानना पड़ेगा और उसे अन्वय में बाधित भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य अर्थ के बाद में भी लक्षणा होती है। परंतु यहाँ न तो गंगा पद का मुख्य अर्थ तीर है और न तीर का अन्वय ही बाधित होता है, अतः लक्षणा से प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सकता। इसके भी अतिरिक्त प्रयोजनवती लक्षणा किसी न किसी प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए की जाती है, जैसे गंगा पद की तट में लक्षणा करने से शीतत्व आदि प्रयोजन व्यक्त होते हैं। यदि इन प्रयोजनों को भी लक्ष्य मानोगे तो इनसे फिर कुछ भी प्रयोजन व्यक्त होना चाहिए। यदि उन्हें प्रयोजन को भी लक्ष्य मानोगे तो भी अन्य प्रयोजन ध्वनित होना चाहिए। इस प्रकार अन्यवस्था दोष आएगा, जहाँ एक स्थान पर अवस्थिति न हो सके वहाँ अन्यवस्था दोष आता है। जो लोग प्रयोजन सहित अर्थ का लक्षण से बोध मानते हैं उनके मत का निराकरण करते हैं, न चापी प्रयोजन शीतत्व आदि से विशिष्ट तीर में गंगा पद की लक्षणा होती है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारणीभूत ज्ञान के विषय तीर और उसके प्रयोजन शीतत्व आदि का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। पहले लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, पीछे उसके प्रयोजन का, अतः एक ही शक्ति से एक ही काल में दोनों का प्रयोजन नहीं हो सकता। इस बात को दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं। नीलादिति मीमांसक लोग वस्तु के प्रत्यक्ष हो जाने पर उसमें ज्ञातता नामक धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। यह ज्ञातता प्रत्यक्ष का फल है, अतः इसके अनंतर ही उत्पन्न होती है। नैयायिक लोग ज्ञान के पीछे अनुव्यवसाय माने हैं, जैसे घट ज्ञान के पीछे ज्ञातो घट अर्थात घट ज्ञान जान लिया इत्याकार ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को अनुव्यवसाय कहते हैं। ये लोग ज्ञातता को नहीं मानते। इन दोनों ही मतों में कारणभूत प्रत्यक्ष ज्ञान के पीछे ही फलीभूत ज्ञान ब्रैकेट ज्ञातता और अनुव्यवसाय प्रकटबंध माना जाता है, एक साथ ही नहीं, क्योंकि कार्य कारण भाव में पौरापर्य का नियम आवश्यक है। इसी कारण कारणीभूत लक्ष्य अर्थ का ज्ञान और उसके फलस्वरूप व्यंग अर्थ प्रयोजन का ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता। संस्कृत श्लोक नंबर 4। नानुमानं रसादिनाम व्यंग्यानाम बोधनक्षमं आभासत्वेन हेतुनाम स्मृतिर्न च रसादिभि। व्याख्या संस्कृत में, व्यक्ति विवेक कारिणा हिम यापि विभावादिभ्यो रसादिनाम प्रतीतिः सानुमान एवांतर भवितुर्महति विभावानुभावव्यभिचारी प्रतीतरहि रसादी प्रतीतेः साधनम् इष्यति तेहि रत्यादिनाम् भावानाम् कारणकार्य सहकारी भूतास्तानु अनुमानपयन्त एव रसादिनिष्पादयन्ति त एव प्रतीयकान् आस्वादपदवीगताः सन्तो रसा उच्यन्त इति अवश्यम् भावितः प्रतीति कर्मः केवलम् अशुभ भावितया न लक्ष्यते यतो अयम् द्याप्य अभिव्यक्ति कर्म इति यदुक्तं तत्र प्रष्टव्यम् किं शब्दाभिनयः समर्पित विभावादि प्रत्ययानुमित रामादिगत रागादि ज्ञानमेव रसत्वेनाम अभिमतम् भवतः तद्भावनया औकैर्भाव्यमानः स्वप्रकाशानन्दो वा आद्येन विवादः किन्तु रामादिगतारादिज्ञानम् रससंज्ञया नुच्यते अस्माभिः इत्येव विशेषः। द्वितीयस्तु व्याप्तिग्रहणाभावाद्वेतुर आभाससतया असिद्ध एव यथोक्तम् तेनैव यत्र यत्रैव विधानाम विभावानुभावसात्विकसञ्चारिणि अविधानम् विनयोः वा तत्र तत्र शृङ्गारादिरस आविर्भावः इति सुग्रहैव व्याप्तिः पक्षधर्मता च यथा यर्थान्तरो अभिव्यक्तौ वः सामग्रिष्टा निबन्धनम् सैवानुमतिपक्षे नोगमकत्वे नोगमकत्वेन समन्ता इति इदम् अपि नोन विरुद्धम् न युवन्विधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्माकम् अभिमता किन्तु स्वप्रकाशम् मात्रविश्रान्तः सान्द्रानन्दनिर्भरः तेनात्र सिधायति सिद्धादर्थाद् अर्थान्तरस्य साधनाद्वेततो का भासता यच्च भ्रमधम्मीय इत्यादौ प्रतीयमानम् वस्तु जलकेलितर लकरतल अमुक्तपुन्नः पिहित्तराधिकवादनः जगवदतु जगदवतु को कयुनोर्विघटन संघटन कौतुकी कृष्णः इत्यादौ च रूपक अलंकारादयो अनुमेया एवं तथा हि अनुमानम् नाम पक्षसत्त्वा सपक्षसत्त्व विपक्षव्यावृति तत्त्व विपक्षि विशिष्ट लिंगा अलिंगनो ज्ञानम् ततश्च वाच्याद संबधो अर्थस्तावत्न प्रतीयते अन्याथ इति प्रसंगः स्यात् इति बोध्यबोधयोर अर्थो कश्चित् संबंधो अस्यतेव ततश्च बोधको अर्थो लिंगं बोधकस्य लिंगिः बोधकस्य चार्थस्य पक्षसत्त्वं निबद्धमेव सपक्षसत्त्व विपक्षव्यावृते तत्त्वे अनिस्बद्धे अपि सामर्थ्यात् दसे तस्मादन यद्वाच्यार्थलिङ्गरूपालिङ्गो व्यङ्ग्यार्थस्य अवगमस्तदनुमान एव पर्यवस्यति इति तत्र तथा ह्यान ब्रह्मधम्मीय इत्यादौ गृहे सनिवृतया विहितं भ्रमणं गोदावरीतीरे सिंहो पलब्धेर्भ्रमरा मनु मापयति इति यदुक्तम् तत्रानैकान्तिके हेतुः धीरो अपि गुरुः प्रभो वा निदेशनम् प्रियानुरागे वा गमनस्य सम्भवात् पुंश्चल्या वचनम् प्रमाणिकम् न वेति सन्दिग्धसिद्धश्च जलकेलि इत्यत्र य आत्मदर्शनादर्शनाभ्याम् चक्रवाकविघटन् सङ्कटन् कारि च सञ्चन्द्र एव इतिरेव इत्यमिति न च वाच्यम् उत्रासकादावनैकान्तिकत्वात् एवं विधोऽर्थ एवं विधार्थ बोधक एवं विधार्थत्वात् यन्नैव स तन्नैव इत्यनुमानेन अभ्यपाभास शमानयो योगक्षेमो हेतुः एवं विद्यार्थत्वात् इति हेतुना एवं विधानिष्ठसाधनस्य उपपते तथा दृष्टिम् हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस् मद्गृहे इत्यादौ नलग्रन्थिनाम् तनूलिखनम् एकाकितया च श्रोतोगमनम् तस्याः परकामुकोपभोगस्य लिङ्गिनो लिङ्गमित्युच्यते तश्चात्रैव विहितेन स्वकांत स्नेहनापि संभवति नैकांतिको हेतुः यश्च निषेच्युत चंदनम इत्यादौ दुत्यासत् आत्मकामुकोपभोगो अनुमीयते तत्किं प्रतीयपाद्यता दुत्या तत्काल सन्निहितय वार्णैः तत्काव्यार्थ भावनया वा सहृदयः आद्ययोर्न विवादः तृतीये तु तथाविध अभिप्राय विरहस्थले व्यभिचारः ननु वक्ता व्यवस्था सह कृतत्वेन विशेष्यो हेतुरैति न वाच्यम् एवं विधव्याप्तनुसन्धान स्याभावात् किञ्चैवं विधानाम् कविप्रतिभामात्रजन्मानाम् प्रमाण्यानाम् आवश्यकत्वेन संदिग्धासिदत्तम् हेतोः व्यक्तिवादिना चाधर्म पदसहकार्यानमेवैषाम् पदार्थानाम् व्यञ्जकत्वम् उक्तम् चेन्तेन च तत्कान्धतस्यासाध्यमत्वम् प्रमाणिकम् न वेति कथम् अनुमानम् एतेन अर्थापतिवेदत्वम् अपि व्यङ्ग्यानाम् पास्तम् अर्थात् तरे अपि पूर्वसिद्धव्यापि छिन्नाम् उपजीवैव प्रवृत्तेः यथा जो जीवति स कुत्राप्यवतिष्ठेते जीवति च अन्त्र गोष्ठया अभिधानमश्चैतर इत्यादिः किञ्च वस्त्र विक्रयादौ तर्जनीतोलनेन दशसङ्ख्यादि वत्सूचनविद्ध वेद्यो अप्यम् न भवति सूचनबुद्धेरपि सङ्केतादिलौकिक प्रमाणासापेक्षत्वेनानु अनुमानेन प्रकारताङ्गीकारात् यश्च संसकारजन्यत्वाद्रसादिबुद्धिः स्मृति इति केचित् तत्रापि प्रत्यभिज्ञानाम् अनैकान्तिकया हेतुराभासता दुर्गलङ्घितः इत्यादौ च द्वितीयोऽर्थो नास्तेव इति यदुक्तम् महिमभट्टेन तदनुभवसिद्धम् पल्पतो गज निमीलिकैव तदेव मनु भवसिद्धस्य तत्तद्रसादील क्षणार्थस्य सत्यापलापतया ततच्छब्दाद्धन्वय व्यतिरेकानु विधायितया चा अनुमानादि प्रमाणवेधतया चा अविधादि वृतित्रय बोध्यतया चतुरिया वृतिरूपस्यैव वेति सिद्धम् यञ्च व्याप्त्याद्य अनुसन्धानम् विनापि भवतीत्यखिलम् निर्मलम् तत्किनाम केयम् वृतिरित्युच्यते। हिंदी। व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ के कर्ता श्री महिम भट्ट ने व्यंग अर्थ की प्रतीति को अनुमान के अंतर्गत बताया है और व्यंजना शक्ति का खंडन किया है। उनके मत का निराकरण करते हुए नानुमानम इति अनुमान अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अथवा अनुमिति के से रसादि रूप व्यंग अर्थों का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान में सत हेतु चाहिए और व्यंग अर्थ को अनुमेय सिद्ध करने में जो हेतु दिए जाते हैं वे सब आभास अर्थात हेत्वाभास हैं। स्मृति न चर्च इति हेतु के असत होने के कारण ही रसादि की प्रतीति का स्मृति भी नहीं कह सकते। व्यक्ति विवेक कार के मत का उल्लेख करते हैं यापि इति विभाव अनुभाव आदि से जो रसादिकों की प्रतीति मानी है वह भी अनुमान के ही अंतर्गत हो सकती है, क्योंकि विभाव अनुभाव और संचारी भावों की प्रतीति रसादिकों की प्रतीति का साधन मानी जाती है और वे विभावादिक रत्यादिक भावों के कारण कार्य और सहकारी होते हैं। सीता आदिक आलम्बन विभाव और उपवन चंद्रिका आदि उद्दीपन विभाव रति के कारण माने जाते हैं एवं भ्रुविक्षेप कटाक्षादिक उसी रति या अनुराग के कार्य होते हैं और लज्जा हरास आदि संचारी भाव रति के सहकारी समझे जाते हैं। यही सब विभावादिक पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो दृष्ट अनुमान के द्वारा रत्यादिकों का ज्ञान कराते हुए रसादिकों को निष्पन्न करते हैं। अनुमान के द्वारा प्रतीयमान वे ही रत्यादिक आस्वाद स्वरूप को प्राप्त होकर रस कहलाने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि काव्यों के विभाव अनुभाव और संचारी भाव का वर्णन अवश्य रखता है और ये सब रति आदि के कारण कार्य अथवा सहकारी होते हैं। अतः जब कहीं सुंदर स्वच्छ चंद्रिका में राम के सीता दर्शन का वर्णन और कटाक्ष भ्रुविक्षेप आदि का निरूपण एवं लज्जा ह्रास आदि का दर्शन या अवण होता है तो झट से यह अनुमान हो जाता है कि राम अथवा सीता के हृदय में रति का उद्घोष उद्बोध हुआ है। अनुमान का प्रकार यह है, सीता राम विषय करतीम इति तस्मिन् विलक्षण्य स्मित कटाक्ष तत्त्वात् या नैवम सा नैवम यथा मंथरा। अर्थात सीता के हृदय में राम के प्रति रति प्रकट अनुराग प्रकट बंध उत्पन्न हुई है। प्रकट या प्रतिक्रिया है प्रकट बंध, क्योंकि राम को देख के इसने प्रेम भरी दृष्टि से मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया। यह हेतु है जिसे राम में रति नहीं है वह इनकी ओर इस प्रकार नहीं देखती जैसे मंथरा। यह दृष्टांत है, इसलिए लक्षणा विलक्षणा कटाक्षादिक से युक्त होने के कारण सीताराम विषयक रति से युक्त है इत्यादि उपनय और निगमन के द्वारा पहले रत्यादि भावों का अनुभव माना जाता है और फिर यही रत्यादिक उत्कृष्ट आस्वादी कोटि के पहुँच के रस में परिणत हो जाते हैं। प्रश्न, यदि यह कहते हो कि पहले रति आदि का अनुमान होता है पीछे रसादी की निष्पत्ति होती है तो इस प्रकार का कार्य कारण भाव स्वीकार करने से क्रम से ही कार्य होगा, पहले कारण आदि की प्रतीति फिर उससे रत्यादि का अनुमान और फिर रस निष्पत्ति होगी, परंतु ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि रसादिकों को असंलक्ष क्रम व्यंग माना है, इनमें क्रम संलक्ष नहीं होना चाहिए। महिम भट्ट इसका उत्तर देते हैं, अवश्यम्मा विति रस की प्रतीति में क्रम तो अवश्य ही रहता है परंतु शीघ्रता के कारण वह संलक्ष प्रकट स्फुटता अनुभूयमान प्रकटमान नहीं होता, अतः इसे असंलक्ष क्रम कहते हैं। यदि क्रम बिल्कुल न होता तब तो इसे अक्रम व्यंग कहना चाहिए था। अतः उक्त क्रम के रहने पर भी अनुमान मानने में कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि व्यंजना से रस बोध मानने वाले भी तो रस की अभिव्यक्ति का ही क्रम मानते हैं। पहले विभाव आदि से रत्यादि की प्रतीति होती है और फिर रस की निष्पत्ति होती है। ग्रंथकार इस मत का विकल्पों के द्वारा खंडन करते हैं, तत्र प्रष्टव्यम इति। यहाँ यह पूछना है कि रस अथवा अभिनय से बोधित विभाव आदि को के ज्ञान के द्वारा राम आदि में रति आदि का अनुमान होता है, क्या उसी को आप रस मानते हैं या उसकी भावना के द्वारा सहृदय पुरुषों की हृदय में भावित स्वयं प्रकाश तथा आनंद स्वरूप किसी अलौकिक चमत्कार को आद्य इति। यदि इनमें से पहला पंच माने तो हमारा कोई विवाद ही नहीं, केवल भेद इतना है कि हम राम आदि के हृदय में स्थित अनुराग आदि के ज्ञान को रस नहीं मानते। अतः हमारा सम्मत रस तुम्हारे उक्त कथन से भी अनुमान गम्य नहीं सिद्ध हो सकता। द्वितीय स्तु, यदि दूसरा पक्ष मानो तो उसमें व्याप्ति ग्रह नहीं होता, अतः हेतु की अभासता के कारण वह अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता। तुमने जो हेतु दिया है व्याप्ति ग्रह न होने के कारण हेतु अभास है, अतः अलौकिक चमत्कार रस रूप तुम्हारे अनुमान से गम्य नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि राम और सीता की चेष्टाओं से तुम यही अनुमान कर सकते हो कि राम सीता से अनुरक्त है अथवा यह कि सीता राम से अनुरक्त है, परंतु सीता में राम के अथवा राम में सीता के अनुराग को जान लेना मात्र तो हमारे मत में रस है नहीं। हम तो सीता में राम आदि के अनुराग को जानने के पीछे भावना के बल से सहृदयों के हृदय में तो जो विलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता है, सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादिकों का जो अलौकिक आनंद के रूप में परिणाम होता है उसे रस कहते हैं। उसका आपके उक्त अनुमान में कोई संबंध है ही नहीं। यदि कहो कि पहले अनुमान से राम में अनुराग का ज्ञान होगा और फिर दूसरे अनुमान से हृदयों में रस का ज्ञान होगा, यत्र यत्र रामादिगता अनुराग ज्ञानम तत्र तत्र रसोत्पत्ति ही, जिस जिसने राम का अनुराग जाना है उस उसके हृदय में श्रृंगार रस का मान होता है। इस प्रकार की व्याप्ति का ज्ञान करने के पीछे यह अनुमान करेंगे कि अयम सामाजिक श्रृंगार रसवान रामादिगतानुराग ज्ञान अवतत्वात सामाजिकांतारवत, इस हृदय के हृदय में श्रृंगार की उस रस की उत्पत्ति हुई है क्योंकि इसने राम आदि के अनुराग को जाना है। अन्य सामाजिकत्व इस श्रृंगार से रस का ज्ञान होगा यह मत ठीक नहीं क्योंकि इसमें व्याप्ति ग्रह ही नहीं होता। धूम के वहनी का अनुमान इसलिए होता है कि धूम वहनी के बिना नहीं रहता, उसके साथ ही रहता है, परंतु उक्त अनुराग ज्ञान सदा रस के साथ नहीं रहता। पुराने वेद पाठी और बूढ़े मीमांसक लोग भी भ्रो विक्षेप आदि से रामादिगत अनुराग का तो अनुमान कर लेते हैं, परंतु उन बेचारों के शुष्क हृदय में रस की बूंद भी नहीं पड़ती। यदि अनुराग ज्ञान से ही रस हो जाता तो उनके हृदय में भी होना चाहिए था। अतः उक्त व्याप्ति का अनुगमन न होने के कारण यह हेतु व्यभिचारी है, इसलिए इससे रस का अनुमान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त हृदय को अपने हृदय में जो रसत्वात होता है उसे अनुमान द्वारा सिद्ध करना भी ठीक नहीं। यदि अपना ज्ञान अपने ही को अनुमान द्वारा प्रतीत होगा तो फिर उसका प्रत्यक्ष किसे होगा? रस ज्ञान स्वरूप होता है और उस अपना ज्ञान अपने को सदा प्रत्यक्ष भी होता है, इसलिए भी रस को अनुमेय कहना ठीक नहीं। यह चक्त मिति और यह भी जो उन्हीं ब्रगट महिम भट्ट ब्रगट बंद ने कहा है कि यत्र यत्रोक्त, जहाँ जहाँ इस प्रकार के विभाव अनुभव सात्विक और संचारियों का कथन अथवा अभिनय होता है वहाँ वहाँ श्रृंगार आदि रसों का आविर्भाव होता है। इस प्रकार व्याप्ति और पक्ष धर्मता सुगम ही है और उनका यह कथन है कि यर्थान्तरत इति, तुम व्यंजनावादी लोग जिस सामग्री विभावादि को दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति का कारण मानते हो उसी को हम अनुमान में अनुमति पक्ष में गमक अर्थात अनुमिति का साधक मानते हैं। इस सब का खंडन करते हैं इदम इति। यह बात भी हमारे विरुद्ध नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त व्याप्ति से विभाव आदि सामग्री के द्वारा राम आदिगत अनुराग आदि का ही ज्ञान हो सकता है। हमने वह ज्ञान रस रूप से आस्वाद्य माना ही नहीं है, हम तो केवल स्वप्रकाश में विश्रांत अर्थात ज्ञान स्वरूप और सांद्र आनंद से व्याप्त चमत्कार को रस मानते हैं। उसका उक्त प्रकार से अनुमान हो ही नहीं सकता। तेनात्र इति, इसलिए यहाँ जो सिद्ध करना चाहते थे उससे अन्य वस्तु को सिद्ध कर बैठने के कारण हेतु आभासित है। हेतु वही होता है जो अभीष्ट साध्य को सिद्ध कर सके, परंतु उक्त अनुमान के हेतु ने जिसका जन्म रस को अनुमान के अंतर्गत सिद्ध करने के लिए हुआ था, रस को तो अनुमेय सिद्ध नहीं किया किंतु वही और ही वस्तु रामादिगत अनुराग को अनुमान से सिद्ध किया। अतः अर्थांतर का साधक होने के कारण यह हेतु नहीं हेत्वाभास है। विनायक परुक्रमाणो रचयामा सवानरम, व्यक्तिरेक विवेककार ने व्यंग वस्तु और व्यंग अलंकारों को भी अनुमान ही में अंतर्भूत किया है। उस मत का उल्लेख करते हैं यचत्यादि भ्रम धार्मिक इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में प्रतीयमान वस्तु और जल केली इत्यादि पद्यों में प्रतीयमान अलंकार भी अनुमेय ही है, सब अनुमान से ही ज्ञात हो सकते हैं, उनके लिए अलग व्यंजना शक्ति के मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जल केली जल क्रीड़ा के समय चंचल करतल से राधिका के मुख को बार बार ढांक के और खोल के चक्रवात के जोड़े का वियोग और संयोग करने में कौतुकी कृष्ण श्री कृष्ण संसार की रक्षा करें, इसमें रूपक अलंकार व्यंग है। उपमेय में उपमान का आरोप करने पर रूपक अलंकार होता है। इस पद का यह भाव है कि जल क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण जी जब राधिका के मुख को ढक लेते हैं तब चकवों का जोड़ा आपस में मिल जाता था और जब उसे खोल देते थे तभी चंद्रोदय हुआ समझकर वे दोनों वियुक्त हो जाते थे। रात्रि में चकई चकवे वियुक्त हो जाते हैं और दिन में एक साथ रहते हैं। इस कथन से मुख का चंद्रमा से अभेद प्रतीत होता है, अतः रूप का अलंकार यहाँ व्यंग है। इस अनुमान से सिद्ध करते हैं तथा ही पक्ष और सपक्ष में रहने वाले एवं विपक्ष में न रहने वाले हेतु के साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे पर्वतों बहिमान धूमान, इस अनुमान में धूम हेतु है कि वह पक्ष ब्रैकेट संदिग्ध साध्यवत बराबर पर्वत ब्रैकेट बंद में तो दिखता ही है और सपक्ष ब्रैकेट निश्चित साध्य बराबर ब्रैकेट बंद महानस आदि में भी उसकी सत्ता निश्चित है एवं विपक्ष ब्रैकेट निश्चित साध्य भावत ब्रैकेट बंद तालाब आदि जिनमें अग्नि का अभाव निश्चित है उनमें हेतु भूत धूम नहीं रहता। अतः धूम रूप हेतु पक्ष सत्व सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृतत्व इन तीनों धर्मों से युक्त है। इससे जो वहनि का ज्ञान होता है उसमें अनुमान कहते हैं। ततश्च इति प्रकृत में यह भी मानना ही पड़ेगा कि वाच्य अर्थ से असंबंध अर्थ को व्यंग नहीं होता है। यदि यह न मानो तो अतिव्याप्ति होगी, चाहे जिस वाच्य से चाहे जो कुछ व्यंग निकलने लगेगा, कोई व्यवस्था ही न रहेगी। ततश्च इति इसलिए बोध्य और बोधक ब्रैकेट व्यंग और व्यंजक अर्थों का आपस में कोई संबंध अवश्य मानना पड़ेगा। अतएव बोधक अर्थ लिंग हेतु और बोध्य अर्थ लिंगी साध्य सिद्ध होता है। बोधकस्य च इति भ्रम धार्मिक यह वैपरीत्य संबंध है और बोधक ब्रैकेट भ्रमण रूप वाच्य अर्थ ब्रैकेट बंद का पक्ष धार्मिक में सत्य तो कही दिया गया है। सपक्ष सत्य और विपक्ष व्यावृत्ति तत्व यद्यपि कहे नहीं परंतु सामर्थ्य से जान लेने चाहिए। इस प्रकार हेतु भूत बोधक अर्थ में पक्ष सत्व सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति ये तीनों धर्म सिद्ध हुए। अतः इस पद्य में इन तीनों धर्मों से युक्त भ्रमण विधि रूप वाच्य अर्थ लिंग है, उससे भ्रमण निषेध रूप व्यंग अर्थ जो यहाँ लिंगी अर्थात साध्य है उसका ज्ञान अनुमान ही सिद्ध होती है। जैसे पर्वतों बहिमान धूमात इस अनुमान से पूर्वोक्त प्रकार से पक्ष सत्व आदि तीनों धर्मों से कुछ युक्त हेतु अनुमापक होता है, उसी प्रकार प्रकृत पद्य में भी व्यंग अर्थ अनुमान गम्य ही है। अतः व्यंजना शक्ति को अतिरिक्त मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ सुहृदय पुरुष अनुमाता है, धार्मिक पुरुष पक्ष है। गोदावरी के किनारे भ्रमण न करना साध्य है। कुत्ते की निवृत्ति के कारण जो भ्रमण में विश्वस्तता बतलाई गई है उससे भ्रमण में भीरु संबंधित तो प्रतीत होता है। डरपोक आदमी ही कुत्ते आदि से घबराते हैं, जहाँ कुत्ते आदि मिले उधर नहीं जाते। इसी प्रकार प्रकृत में भी यह कहने से कि उस कुत्ते को गोदावरी तटवासी सिंह ने मार दिया, अब तुम विश्वस्त होकर घूमो, यह प्रतीत होता है कि घूमने वाला डरपोक है। पहले कुत्ते के डर से विश्वास पूर्वक नहीं घूमता था, इसलिए भीरु भ्रमण रूप हेतु सिंह युक्त गोदावरी के किनारे भ्रमण भाव का अनुमापक है। भीरु पुरुषों का भ्रमण वही होता है जहाँ भय के कारण का ज्ञान न हो। गोदावरी के किनारे सिंह बैठा बतलाया है, अतः भीरु धार्मिक का वहाँ अभ्रमण अनुमित होता है। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है, धार्मिक पक्ष सिंहवत गोदावरी तीरा अभ्रमण वान प्रकट साध्य प्रकट बन भीरु भ्रमण वत्वात प्रकट हेतु प्रकट बन अन्य भीरुवत प्रकट दृष्टांत प्रकट बन अथवा धार्मिक भ्रणम सिंहवत गोदावरी तीर निष्ठाय मा अभाव प्रतियोगी भीरु भ्रमणत्वात भीरु देवदत्त भ्रमणवत यद यद भीरु भ्रमणम तद तद भय कारणानुपलब्धि पूर्वकम इति व्याप्ति ही। इसका खंडन करते हैं तन्वित्यादि। यह जो तुम कहते हो कि प्रकृत पद्य में कूते ही निवृत्त के कारण घर में भ्रमण के विधान से गोदावरी के तीर में भ्रमण का अनुमान होता है क्योंकि सिंह वहाँ बैठा है, यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यह हेतु अनेकांतिक है। अतः यह हेतु नहीं हेतुआभास है, जैसे धूम निश्चित रूप से वाणी के साथ व्यभिचारी है रहता है, उसी प्रकार यह हेतु अपने साथ साध्य के साथ निश्चित रूप से न रहने के कारण अनेकांतिक अर्थात व्यभिचारी है। यहाँ भीरु भ्रमण हेतु है और सिंह बैठा होने के कारण गोदावरी के किनारे भ्रमण भाव साध्य है। यदि भय युक्त स्थान पर भीरु का भ्रमण कभी होता ही न हो तब तो भीरु भ्रमण होने के कारण गोदावरी के किनारे धार्मिक के भ्रमण का अभाव सिद्ध हो सकता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। भीरोर इति भय युक्त स्थानों पर भी गुरु अथवा स्वामी की आज्ञा के कारण यदा किसी के प्रेम में पड़कर भीरु पुरुषों का भी भ्रमण होता ही है, इसलिए उक्त हेतु इस साध्य का साधक नहीं हो सकता। यदि कहो कि किसी प्रकार के आपातकाल में भले ही संभव हो परंतु स्वेच्छावश भीरुओं का भ्रमण ऐसे स्थान में कभी नहीं होता, हम उसी का अनुमान करते हैं, यह भी ठीक नहीं क्योंकि पुंसलया इति गोदावरी के किनारे सिंह बताने वाली एक उल्टा है, कोई सत्यवादिनी नहीं। अतः वचन ठीक है या नहीं इस प्रकार का संदेह भी बना ही रहेगा। प्रमाणांतर से तो वहाँ सिंह की सत्ता निश्चित है ही नहीं, केवल वचन से ही प्रतीत होती है और कुछ उस उल्टा के वचन के प्रमाण में संदेह है, इसलिए यहाँ यद यद भीरु भ्रमणम तद तद भय कारणानुपलब्धि पूर्वकम यह व्याप्ति उक्त संदेह के कारण तीर में संघटित नहीं होता क्योंकि तीर के भय का कारण है या नहीं इसी में संदेह है। अतः उक्त संदिग्ध व्याप्ति से व्याप्य उक्त हेतु भी संदिग्ध होने के कारण असिद्ध भी है। वस्तुतः गृहे स्वनिवृत्त्या विहितं भ्रमणं यह महिम भट्ट कृत व्याख्या भी असंगत है। प्रथम तो भ्रमण धार्मिक इत्यादि पद्य में गृह पद भी है ही नहीं, अतः यदि किसी प्रकार इसका आक्षेप मान भी ले तो अर्थ असंगत हो जाएगा। यह पुंसली धार्मिक के भ्रमण का विधान किसके घर में कर रही है, अपने घर में या धार्मिक के घर में अथवा किसी अन्य के घर में? कोई पुंसली अपने घर में किसी धार्मिक को भ्रमण ब्रैकेट चहल कदमी ब्रैकेट बंद करने को बुलाए, यह संभव है? इस प्रकार के अर्थ की कल्पना करना साहित्यिक अज्ञान का परिचायक है। फिर क्या धार्मिक के ही घर में भ्रमण का विधान है, तब तो व्यर्थ है, उसे अपने ही घर में घूमने से रोकने वाला ही कौन है? फिर उसके घर में कुत्ते का क्या काम? यदि हो भी तो क्या उसका अपना कुत्ता ही उसे काटने दौड़ता था? वहाँ स्वनिवृत्ति कैसी? यदि किसी तटस्थ के घर में भ्रमण का विधान हो तो अनधिकार चेष्टा है। वस्तुतः न तो इस पद्य में गृह पद बढ़ा है और न इससे उसकी अपेक्षा ही है। इससे महिम भट्ट के अनुमान की टांग ही टूट जाती है। इसका अर्थ हम पहले लिख चुके हैं। इस प्रकार व्यंग वस्तु की अनुमेयता का खंडन करके व्यंग अलंकार की अनुमान गम्यता का खंडन करते हैं। जलकेली इत्यादि पद में जो यह अनुमान किया गया है कि अपने दर्शन से चक्रवाकों का वियोग और अदर्शन से संयोग करा देने के कारण राधा का मुख चंद्रमा प्रतीत होता है। ब्रैकेट राधा वदनम चंद्रत्व प्रकारकस्व विशेष्य बोधजनम स्वदर्शना अदर्शनाभ्याम चक्रवाक विघट संघटनम कारित्वा तगगन चंद्रवत इत्यनुमानकारः। ब्रैकेट बंद। यह भी ठीक नहीं क्योंकि जिसे देखकर चक्रवाक वियुक्त हो जाए और उसके न दिखने पर मिले रहे वह चंद्रमा ही हो, वह नियम नहीं है। कोई डराने वाला पुरुष या बाज आदि पक्षी भी ऐसा हो सकता है जिसे देखते ही चकई चकवे इधर उधर उड़कर वियुक्त हो जाए और जब तक वह न दिखे तब तक मिले रहे। इसलिए यह हेतु भी अनेकांतिक है। एवं विधायति इस प्रकार की वस्तु का बोधन करती है। इस प्रकार की वस्तु होने से ऐसा अनुमान करने में भी हेतुआभास ही होता है क्योंकि यहाँ जो हेतु है उससे अनिष्ट अर्थ भी लिया जा सकता है। उसके शब्द ऐसे नहीं हो जो किसी विशेष वस्तु का विशेष रूप से निर्देश कर सके। सामान्यतः सभी ओर उसे लगाया जा सकता है। अतः यह भी सत हेतु नहीं। तथा दृष्टिम इसी प्रकार दृष्टिम है प्रतिवेशिनी इत्यादि पूर्वोक्त पद में जो यह कहते हो कि नल ग्रंथियों के द्वारा देह में खरोट पड़ने और अकेले नदी पर जाने से इस पद्य के कहने वाली का पर पुरुष संग अनुमित होता है। अकेले नदी पर जाना और वहाँ नल की गांठों से देह में खुएचे लगाना ये दोनों हेतुभूत अर्थ है और पर का उपयोग भोग उनका साध्य है। यहाँ इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होगा। यम पर काम उकोप भोगवती एकाकितया स्त्रोतो गमने सती तनूली खनत्वात कुलटा ननंतरवत। यह भी ठीक नहीं। तुम यह कहते हो कि अकेले नदी पर जाना पर पुरुष के स्नेह से ही हो सकता है और देह में खरोट उससे के संग से ही हो सकते हैं, पर सो ठीक नहीं क्योंकि इसी पद्य में नदी पर जाने का कारण स्वकांत स्नेह बताया है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेम बस उसकी सेवा या प्रसन्नता के लिए अकेली नदी पर जाकर जल लाए यह बात असंभव नहीं। नदी पर जाना पर पुरुष के प्रेम से ही हो सकता है, अपने पति के प्रेम से नहीं हो सकता यह नहीं कहा जा सकता। अतः इस पद्य में हेतु भी पूर्ववत अनेकांतिक है, अपने साध्य के साथ सदा नहीं रहता, अतः उनकी व्याप्ति गृहित नहीं हो सकती। यदि पर पुरुष के प्रेम के बिना अकेले नदी पर जाना असंभव होता और नल ग्रंथियों से तनु लेखन भी असंभव होता तो यह व्याप्ति गृहित हो सकती थी कि यत्र यत्र एकाकितया स्त्रोतो गमने सती तनु लेखनम तत्र तत्र पर काम उपभोगः। परंतु प्रकृत में यह नहीं हो सकता। अतः यह हेतु भी अनेकांतिक है। यच्च इति और निःश्रेष इत्यादि में जो कहते हो कि दूती का उस कामुक के साथ संभोग अनुमित होता है सो क्या उस पद्य की प्रतिपाद्य दूती को अनुमान होता है या उस समय पास खड़े हुए अन्य जन इस दूती के काम उपभोग का अनुमान कर लेते हैं अथवा इस काव्य के अर्थ की भावना के द्वारा सुहृदों को यह अनुमान होता है। पहले दोनों मतों में कोई विवाद नहीं। यह ठीक है कि चंद्र नव्य वन आदि स्नान आदि से भी हो सकते हैं, केवल काम भोग में प्रतिनियत न होने के कारण व्याप्ति ग्राहक और अनुमापक नहीं हो सकते। त तथापि दूती और उसके स्थान के समय पास खड़े हुए अन्य लोगों को अनेक विशेषताएं दिख सकती है। उस दूती की उस समय की सूरत सकल या विशेष अवस्था को देखकर इस प्रकार की अनेक विशेषताएं समझ में आ सकती है, जो संभोग में ही प्रति नियत हो, जिनका स्नान आदि के कारण होना संभव न हो। दूती को तो प्रत्यक्ष भी है और अनुमान भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षाकलितमपि पदार्थम अनुषिमिष्यन्ते तरकरशिकाः प्रकृतिरी वाचस्पति मिश्र प्रकट बंध। परंतु यह तीसरा पक्ष मानो तो जहाँ उस प्रकार व्यंग अभिप्रेत नहीं है, केवल यही अभिप्राय है कि तो नहाने चली गई और उसके पास न गई, वहाँ व्यभिचार होगा। इस प्रकार के शब्दों से सब स्थलों पर प्रेम ही अर्थ बोधित हो, यह नियम तो है ही नहीं, फिर व्याप्ति ग्रह कैसे हो सकता है। नन्व इति, यदि कहो कि हम वक्ता आदि की अवस्था से अथवा वक्त आदि की अवस्था से हेतु की विशेषित करेंगे, अर्थात यह मानेंगे कि जहाँ वक्ता इस प्रकार का मुंह बना के इन शब्दों को कहे, अथवा वक्ता और बोध्य आदि की इस अवस्था में यदि ये शब्द कहे जाएं, तो इस प्रकार का संभोग रूप अर्थ अनुमित होता है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार की व्याप्ति का अनुसंधान नहीं हो सकता। वक्ता था या वक्त्र आदि की विशेष दशाएं न तो शब्द से उपस्थित होती है और न हो ही सकती है, अतः उनके साथ हेतु को विशेषित करके व्याप्ति ज्ञान कराना संभव है। किंच इति, इसके अतिरिक्त इस प्रकार के काव्य जो कि काव्यों को अलौकिक प्रतिभा से ही उत्पन्न होते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे प्रमाणिक अर्थात सदा वस्तु तत्व के अनुगामी ही हो सकती है। अतः उन काव्यों में कहे हेतुओं का प्रमाण्य भी संदिग्ध है, इसलिए इस प्रकार के स्थलों में हेतु संदिग्ध सिद्ध भी रहेगा, अतः इसे अनुमान नहीं हो सकता। व्यक्तिवादी ब्रकट व्यंजना मानने वाले ब्रकट बंद ने अधम पद के साथ रहने से ही इन चंदन नव्यन वन आदि पदार्थों का व्यंजकत्व माना है, परंतु कवि ने इस कथन मात्र से जो उसका कांत अधम हो नहीं सकता, उसका कांत वस्तुतः अधम है या नहीं, यह संदेह बना ही रहेगा। फिर इस संदिग्ध दशा में हेतु से अनुमान आप कैसे कर सकेंगे। एतनेत इति, इस पूर्व संदर्भ से व्यंग अर्थों का अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित होना भी खंडित हो गया, क्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण भी व्याप्ति ज्ञान का आशय करने ही प्रवृत्त होता है, और जहाँ व्यभिचार और संदेह बने रहे वहाँ व्याप्ति ज्ञान हो ही नहीं सकता, अतएव अर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पैर नहीं रख सकता। अर्थापत्ति प्रमाण का विषय दिखाते हैं यथ इति, जैसे जो जीता है वह कहीं अवश्य रहता है। चैत्र जीता तो है परंतु इस गोष्ठी में नहीं है। यहाँ अर्थापत्ति से यह ज्ञात होता है कि चैत्र इस गोष्ठी से बाहर कहीं है, वह किसी स्थान पर अवश्य रहेगा, बिना किसी स्थान पर रहे जीवित नहीं रह सकेगा। जैसे बिना अग्नि के धूम नहीं रह सकता, इससे जीवित होना किसी स्थान पर स्थिति को बोधित करता है। चैत्र का गोष्ठी में न होना प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः चैत्र का गोष्ठी के बाहर अवस्थान ज्ञात होता है। इस प्रकार व्याप्ति न होने पर अर्थापत्ति प्रमाण की गति नहीं होती, अतः व्यंग अर्थ अर्थापत्ति गम्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ व्यभिचारी और संदेह आदि दोषों के कारण व्याप्ति ग्रह नहीं हो सकता। किंच इति, कपड़े आदि बेचने के समय उंगली उठाने से जैसे 10 संख्या का बोध होता है, ऐसी सूचन बुद्धि से भी रस का ज्ञान नहीं हो सकता। सूचन बुद्धि भी लौकिक संकेत आदि की अपेक्षा करती है, जहाँ पहले के संकेत किया जाता है वहाँ तर्जनी उठाने से दोष का ज्ञान होता है, बिना संकेत ज्ञान के सूचन बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती। अतः यह एक प्रकार का अनुमान ही है। रस जब अनुमान गम्य नहीं है तो इस प्रकार की बुद्धि का विषय भी नहीं हो सकता। यच्च इति वासना नामक संस्कार से उत्पन्न होने के कारण रस का ज्ञान एक प्रकार का स्मृति है। यह जो कोई कहते हैं वह भी ठीक नहीं, क्योंकि पत्तभी ज्ञान में व्यभिचारित होने के कारण यह भी हेत्वाभास है। जहाँ पहली देखती हुई वस्तु के सामने आने पर सोयम देवदत्त वह यही देवदत्त है इत्यादि ज्ञान होता है, उसे पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। इससे सह इतना अंश स्मृति का है और अयम अंश प्रत्यक्ष का है। यह पृथ्वी ज्ञान भी संस्कार से उत्पन्न होती है परंतु स्मृति नहीं होती, अतः जो संस्कार जन्य हो वह स्मृति ही है, ऐसा नियम नहीं रहा। क्योंकि स्मृतित्व रूप साध्य के बिना भी संस्कार जन्य रूप हेतु पृथ्वी ज्ञान में रह गया, अतः यह अनुमान की रस ज्ञान प्रकट पक्ष प्रकट बंध स्मृति ही प्रकट साध प्रकट बंध संस्कार जन्य ज्ञान प्रकट हेतु प्रकट बंध स्मृत्य अंतर्वत अनेकांतिक होने के कारण दूषित हो गया है। इस कारण रस को स्मृति भी नहीं कह सकते। जो लोग पृथ्वी ज्ञान को स्मृति जन्य मानते हैं संस्कार जन्य नहीं मानते, उनके मत में यह दोष नहीं है। जो लोग उसकी कारणभूत रस की वासना को संस्कार मानते विशेष मानते हैं उन्हीं के मत में यह संदेह उठता है। जो रस की वासना को संस्कार से अतिरिक्त मानते हैं उनके मत में कोई आशंका नहीं रहती। दुर्गा लंगिते इति महिम भट्ट ने यह जो कहा है कि दुर्गा लंघित इत्यादि शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के उदाहरण में दूसरा अर्थ प्रतीत ही नहीं होता, सो तो अनुभव सिद्ध पदार्थ का अपलाप करने वाले उन महाशय की गजनी मेलिका ही है। जैसे हाथी को आगे पड़ी हुई वस्तु नहीं दिखती, इसी प्रकार कोई यदि प्रत्यक्ष वस्तु को भी न देखे तब तो गजनी मेलिका कहा जाता है। व्यंजना के शास्त्रार्थ का उपसंहार करते हैं तदेवम इति। इस प्रकार चौथी वृत्ति अवश्य ही माननी पड़ेगी या सिद्ध हुआ, क्योंकि पहले तो अनुभव सिद्ध रसादि रूप अर्थ का अपलाप नहीं हो सकता, इस कारण उसके बोधन करने को तुरीय वृत्ति मानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर जहाँ उन्हीं शब्दों के उसी स्वरूप में अवस्थित होने पर उन्हें उन अर्थों का ज्ञान होता है अन्यथा नहीं होता, वहाँ चौथी वृत्ति के बिना काम नहीं चल सकता। जैसे सुरभिमासम भवान भुंगते रुचि रूप कुरुम इत्यादि इन स्थलों में प्रकरणा दिवस अविधा शक्ति के नियंत्रण होने पर भी गोमांस भक्षण तथा अन्य असभ्य अर्थ की प्रतीति बिना चौथी वृत्ति माने हो ही नहीं सकती, एवं रस आदि रूप व्यंग अर्थ न हो तो अनुमान और अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से जाना जाता जा सकता है, और न अविधा लक्षण तात्पर्य नाम की तीनों वृत्तियों में से किसी से बोधित हो सकता है। अतः चौथी वृत्ति माननी ही पड़ेगी, यह बात सिद्ध हो चुकी है। यह वृत्ति व्याप्ति आदि के अनुसंधान के बिना भी प्रवृत्त होती है, इससे सब प्रवक्त विषय स्वच्छ हो गया है। श्लोक नंबर 5 साचेयम् व्यञ्जनानाम वृत्तिरित्युच्यते बुधै रसव्यक्तौ पुनर्वृत्तिम् दशनाख्यामपरे विदुः व्याख्या संस्कृत एतञ्च विविच्युक्तम् रसनिरूपणम् प्रस्ताव इति सर्वम् अवदातम इति साहित्य दर्पणे व्यंजनाभ्या परिनिरूपणे नाम पंचम परिच्छेदः हिंदी इस वृत्ति का नाम क्या है? साचेयम इति विद्वानों ने इसका नाम व्यंजना माना है। कोई लोग रस की अभिव्यक्ति के लिए रसना नाम की पांचवी वृत्ति मानते हैं। इस पर बात की विवेचना रस निरूपण के समय हो चुकी है। इति विमलार्थ अदर्शनीयम पंचम परिच्छेद समाप्त। इस प्रकार साहित्य दर्पण में पंचम परिच्छेद समाप्त हुआ।